السلام علیکم، یہ پارٹ 16 ہے، ناول کال بیل حصہ دوم۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کنول خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212131825۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 16۔ وہ جلدی سے بی جان منے دادا اور خالہ بی کو دیکھ کر سر جھکا کے بیٹھ گئی، پھر بھی چین نہ آیا تو کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ بی جان نے پوچھا۔ وہ پانی بھول گئی لاتی ہوں، وہ چلے گئی۔ اس کی پشت پر سیاہ بالوں کی چوٹی کسی زہریلے ناک کی طرح لہرا رہی تھی۔ جی چاہا اس کا سارا زہر اپنے لبوں سے چوس لوں۔ سرور کی کیفیت نے مجھے پور پور جکڑ لیا، سینے میں تلاتم سا اٹھتا محسوس ہوا، ہاتھ لرس کر رہ گئے اور لگا جیسے میرے ارد گرد کی ہر چیز نشے میں ہے۔ میں نے ایسی کیفیت اپنے اندر محسوس نہیں کی تھی، حالانکہ مونیکا کو دیکھ کر اور ایلسیا کی کوٹ میں اس حسین لڑکی کو دیکھ کر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے دو چار ہوا تھا، مگر اس کیفیت نے میرے بدن پر نہیں صرف دماغ پر حملہ کیا تھا۔ مگر آج میں سرور سے بے حال ہو گیا۔ شاید یہی وہ خوفناک نفسیاتی حملہ تھا جس پابندی کا رد عمل تھا۔ اگر منے دادا، بی جان اور خالہ بھی نہ ہوتی تو یہ جملہ تھا جو جانے کیوں میرے دماغ میں آیا اور میں ایک دم خوف زدہ ہو کر چونکا۔ میں نے سب کو دیکھا، سب کھانے میں مصروف تھے، فرحت اب تک پانی لے کر نہیں آئی تھی۔ بی جان میرے بے حس و حرکت ہو جانے پر کچھ چونکی۔ کیا بات ہے ضیا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جی جی نہیں، جی ہاں کھا رہا ہوں، میں گڑبڑا گیا۔ آ جائے گی وہ، باولی ہے، کسی اور کام میں لگ گئی ہوگی، تم شروع تو کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے فرحت کو آواز دی۔ میں کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر میرے کان باہر کی کسی آہٹ پر لگے رہے۔ پتہ نہیں وہ کب آئی، ایسے دبے پاؤں کے احساس ہی نہیں ہوا۔ پتہ اس وقت چلا جب وہ بی جان کو میرے سامنے والے حصے میں سرکا کر خود خالہ بی کے قریب بیٹھنے لگی اور کچھ ایسے آڑی ہو کر بیٹھی کہ اس کا چہرہ خالہ بی کے کندھے سے چھپ گیا جسے بدلی چھٹ گئی ہو۔ چمکدار دھوپ نکل آئی ہو، مجھے ایسا ہی محسوس ہوا، میں بہتر ہو گیا۔ سرور کی وہ ابر آلود قسم کی کیفیت بدل گئی تھی۔ ہم کل چلے جائیں گے، منے دادا کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ بی جان بھی نوالہ لیتے لیتے رک گئیں۔ یہ کیا بات ہوئی منے میاں؟ بی جان نے شکایت امیز لہجے میں کہا۔ کچھ روز تو رہو۔ نہیں بی جان، آپ کو پتا ہے گھر پر وہاں کوئی نہیں ہے، رضا اور شجا تو ایسے گئے ہیں کہ لگتا ہے واپس آنے کو ہی تیار نہیں۔ ناصر اور طاہر بھی بمبئی میں ہیں، ایک یہ ضیا ہے جس کی وجہ سے دھارس ہے، منے دادا نے جواب دیا۔ شالی بابا سے ملاقات ہو گئی؟ بی جان نے پوچھا۔ جی بی جان، بڑا حوصلہ ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ لوگ واپس آ سکیں گے۔ آئی نہیں، وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اے منے سچ کہو، پوچھنے ضیا سے، منے دادا مسکرائے۔ میں فرحت کے چہرے پر پھیلتی گلابیاں دیکھ رہا تھا، اپنا نام سن کر چونک اٹھا۔ فرحت جو روٹی لینے کو آگے سرکی تھی، فوراً خالہ بی کے پیچھے ہو گئی۔ ہے ضیا، یہ منے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بی جان، اور لگتا بھی ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب یہ اماں یہ پر منصر ہے، ان کا تو دل وہاں بہت زیادہ لگ گیا ہے، बावली है वो तो, और औरत का दिल क्या पानी की तरह होता है, जिस बर्तन में डालो इसी सांचे में ढल जाता है। इतने बरस हो गए घर छोड़े हुए, होलाया तो हो गया ही दिल, पर क्या करती देख लेना, सुनते ही पोटियां बांध लेंगी। ए हाँ, अस्मत का भी बल जड़ा या नहीं, बी जान की तो जैसे भूख ही उड़ गई, वो हाथ झाड़ कर पीछे सिरक गई। हाँ बात तो चली थी, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ नहीं तय नहीं हुआ, होता तो इतला होती, मुन्ने दादा ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। जाते ही मुझे इतला करो कि कब आ रहे हो, मगर वो घर तो अचानक बीजान कुछ कहते कहते रुक गई। इन्होंने कन अखियों से खाला बी और फरहत को देखा। मैं समझ गया कि वो मुबशिर की वजह से परेशान हो गई हैं। जहाँ इतनी बार सुन रखी थी वहाँ ये भी सुना होगा कि शाली बाबा ने इसकी भटकती रूह को हमारे घर में कैद किया हुआ है। नहीं बीजान, शाली बाबा ने इंतजाम कर दिया है ऐसा कि अब कोई मसला नहीं होगा, मुन्ने दादा ने गोल मोल जवाब देकर इन्हें मुतमईन कर दिया। बीजान ने तस्दीक करने को मेरी तरफ देखा, मैंने भी असबात में सर हिला दिया। वो इतने खुश हुई कि भी बयान नहीं कर सकता, वो खुश ना होती तो कौन होता। अम्मा बेटी थी इनकी, वो भी इकलौती, तहसीन खालक के दुख ने भी अब अम्मा से मोहब्बत का रूप धार लिया था। वो अम्मा और हम लोगों के लिए कितनी परेशान रहती होंगी इसका अंदाजा था मुझे। फिर खाला बी की वजह से वो दिल्ली भी नहीं रह सकी थी, कुछ मुन्ने दादा और मुन्ने दादी की वजह से भी वजादारी निभाना पड़ती थी, होना बेटी के लिए तड़पती थी। इनके अंदर वो तो जी जान से चाहती होंगी कि वो लौट आए। मुन्ने दादा खाना खाने के बाद आराम करने चले गए, खाला बी बुरका ओढ़े बाहर निकल गईं। मैं बीजान और फरहत ऊंची छत वाले इस ठंडे कमरे में आ गए, जहां बचपन में मैं फरहत और बीजान सोया करते थे। मुन्ने दादा बाहर बनी बैठक में जा लेते। बैरूनी दीवार के साथ बना हुआ वो कमरा जिसमें बीजान काट कबाड़ डाला करती थी और जिसके बारे में सुना था कि वो आसेब ज़दा है, आज भी बंद था। हम कमरे में जाकर लेट गए। बीजान हाथ का पंखा झला झला कर सब के बारे में पूछ रही थी और मैं मसेरी के कोने पर सुकड़ी सिमटी गुलाबी गुलाबी सी फरहत को देख देख कर मसरूर हो रहा था। मेरा जी चाहा कि बीजान चुप हो जाए, बल्कि कमरे से ही चली जाए। मैं सिर्फ फरहत को देखता रहा। आज मैं इस तरह इसे पहली बार देख रहा था। इसके दमकते हुए रुखसारों में गला हल्का गुलाबी रंग, इन पर बार बार फिसल आने वाली सिया लंबी लट मुझे लोटे ले रही थी। इसकी आंखों में बला की कशिश थी, खूबसूरत जिस्म, गोरे गोरे नरम नरम पांव, मखरूती उंगलियों के दरमियान ब्राउन गढ़े, गुलाबी नाखून, लड़ते होंठों के एक किनारे पर सिया तिल, मेरे अंदर जकड़ से चढ़ने लगे। फरहत मेरी हालत से बेपरवाह बीजान के हाथ से पंखा लेकर इन्हें झर रही थी। ए फरही बेटा, मेरे सर में मेहंदी ही लगा दे, ठंडक पड़ जाएगी, बीजान ने इसे उठा दिया। मुझे लगा जैसे मैं कोई हसीन मंजर देख रहा था जिस पर किसी ने अचानक पर्दा गिरा दिया है। चौंक उठा, मेहंदी लगाना लंबा चौड़ा काम था, वरना मैं तो समझ रहा था कि बीजान बातें करते करते सो जाएंगी, तो मैं चुपके से फरहत को बता दूंगा कि अब इसके बगैर जिंदगी फजूल सी चीज लगने लगी है, और ये भी कि मैं अम्मा को लेकर आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें मांग लूंगा। मगर अब इसका कोई चांस नहीं था। गर्मी में देर तक चलने اعصابی کشیدگی سے دوچار ہونے اور اب ٹھنڈک کمرے میں پلنگ پر لیٹنے سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ مجھے دوپہر میں سونے کی عادت نہیں ہے، مگر یہ میں جانتا ہوں کہ دوپہر کی نیند کیسی نشہ آور ہوتی ہے۔ میں کب سو گیا احساس بھی نہ ہوا، مگر سوتے سوتے میں نے فرحت کی آنکھوں میں بکھرتے ستاروں سے ہزاروں باتیں کر لیں۔ جب اس کی نگاہ اٹھتی وہ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر گھبرا جاتی، مگر اتنی دیر میں مجھے لگا جیسے یہ ستارے میرے وجود میں ٹوٹ رہے ہوں۔ انہیں خوبصورت کیفیات نے مجھے نیند کی پرسکون وادی میں پہنچا دیا۔ میں پتہ نہیں کب تک سویا رہتا اگر کسی نے میری انگلی کو نہ چھوا ہوتا۔ سرور کی لہر تھی جو سوتے میں چونکا گئی۔ میں نے آنکھیں کھول دی، میرے سامنے فرحت کھڑی تھی۔ اٹھی، شام ہو گئی، منے دادا بلا رہے ہیں۔ فرحی، میں نے جلدی سے کمرے کا جائزہ لے کر اطمینان کر لیا کہ کمرے میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ جی فرحی، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اکیلے میں پلیز۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب ایسی کیا باتیں ہوں گی کہ وہ شرما گئی، جسے جانتی ہوں کہ وہ کیسی باتیں ہوں گی۔ میرے اندر طوفان نے کروٹ لی، میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر مجھے ہوش نہیں رہا، شاید میں نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، میز سے ٹکرا گئی، میز پر رکھی چیزیں بج اٹھی۔ کیا کرتے ہیں؟ اس نے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ مجھے جیسے ہوش آ گیا، پتہ نہیں اس کے احتجاج میں کرب تھا یا بے بسی، حیرت تھی، ناراضگی، یا شاید میرے اندر کا آدمی ہی جاگ اٹھا تھا۔ وہ جو بھی تھا اس نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ سوری سوری فرحت، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرحت نے خود کو سنبھالا، چند لمحے مجھے غور سے دیکھا۔ میں نے شرمندگی محسوس کی۔ فرحت پلیز مائنڈ مت کرنا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، میں قابو نہیں رکھ پایا۔ حالانکہ یقین کرو میں بڑے مضبوط کردار کا مالک ہوں فرحت، میں عورت کا احترام کرتا ہوں، اسے جذبات کے طوفان میں تنکے کا سہارا نہیں سمجھتا، اسے کھلونا نہیں جانتا، مگر تم پر اپنا حق ضرور سمجھتا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ حق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یوں چھین لینا۔ پلیز فرحی، میں شاید معافیا مانگ رہا تھا، یقین کریں میں واقعی شرمندہ تھا، مجھے حیرت ہو رہی تھی اپنے آپ پر کہ میں بھی ایسی کوئی چھچوری حرکت کر سکتا ہوں۔ میں فرحت کے دل میں احترام بن کے اترا ہوا تھا۔ آج محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے اس کردار کو خود ہی ملیا میت کر دیا تھا۔ فرحت چپ تھی، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ لوں۔ فرحت، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے کہہ دیا، کیسے بہتر کوئی موقع نہیں تھا، اس طرح میں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کر سکتا تھا، وہ میری اسی جذباتی غلطی کو معاف بھی کر سکتی تھی۔ کتنی دیر کر دیئے کہنے میں، میں اچھل پڑا۔ فرحت کی آواز بھرائی ہوئی ضرور تھی، مگر اس میں پیار ہی پیار تھا، ایسی کشش تھی، ایسا سرور تھا کہ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر شرم کے ساتھ ہی جذبات کی تمتماہٹ تھی۔ میری ساری شرمندگی، سارا افسوس، ساری مایوسی لمحے بھر میں ختم ہو گئی۔ فرحی، تم نے مجھے معاف کر دیا، اچھا اب چلیں، بی جان اور منے دادا کیا سوچیں گے؟ اس کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، ویسے فرحی، میں نے جو کچھ کیا اس میں میرا قصور کم ہی تھا، تمہیں دیکھ کر قابو پانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا چلیں، وہ پلٹی، میں نے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ لیا۔ سنو فرحی، ہم کل چلے جائیں گے، آج میں کچھ وقت تمہارے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا ہوں، یہی سب کچھ کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، میں نے جلدی سے کہا، वादा सिर्फ बातें, तुम्हें छूकर मैं फना नहीं होना चाहता, थोड़ा सा इंतजार कर लूंगा, मैंने शरारत से कहा। वो हंसी, अच्छा बस अब चलें, पहले बताओ ना, मैंने जिद की। ठीक है रात तो आने दें, दी जान और मुन्ने दादा मुन्ने दादी के पास जाने को कह रहे हैं, आप मत जाइएगा, इसने शर्माते शर्माते कहा। और वो तुम्हारी खाला भी, अरे भाई अब मुझे पिटवा देंगे, मत आइए बाहर, मुझे जाने दें। वो लपक कर बाहर निकल गई। मैं धड़ से पलंग पर गिरकर चौड़ा होके लेट गया। मोहब्बत का इजहार कितना मुश्किल लग रहा था और जज्बों ने शिद्दत इख्तियार करके इसे कितना आसान बना दिया था। मैंने रात की तसव्वुर से मुसर्रत महसूस की, इसकी कुर्बत भी तो सरवर अंगेज है, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। और फिर बीजान की आवाज सुनकर जल्दी से उठकर आंखें मलने लगा। वो कमरे में दाखिल हो रही थी। अरे जिया, मगरिब का वक्त होने वाला है, फिर सारी रात उल्लुओं की तरह जागोगे, उठो बस। उठ गया बीजान, मैंने ऐसी शक्ल बना ली जैसे अभी अभी ही मेरी आंख खुली हो। अंगड़ाई ली, मुंह चलाया, चप्पल पैरों से घसीटता हुआ खड़ा हो गया। रात को मुन्नी बोबो के घर चलना है, पोता आया था इनका बुलाने को। सारे मेरठ को खबर हो गई कि मुन्ने और तुम आए हुए हो, उन्होंने खाने पर बुलाया है। और भैया ये ना दिल्ली है ना बम्बई, यहाँ लोग सर शाम ही खाना खा लेते हैं, तुम लोगों ने अपनी आदतें बिगाड़ ली हैं, देर से खाना, देर से सोना और देर से उठना। बी जान मैं नहीं जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ, पिछली बार मिलकर तो गया था, मैं सहन में निकल आया। लो कहाँ मिलकर गए थे, वो तो शिकायत कर रही थी, वो मेरे पीछे पीछे थी, और अब तो मुन्ने मियाँ भी आए हुए हैं। हाँ तो इन्हें ले जाएं। अरे हाँ बीजान, मैंने एकदम पलट कर इन्हें रोक दिया। पहले पलट कर देखा तो करीब में कहीं मुन्ने दादा तो नहीं, फिर पूछा, बीजान मैंने सुना था कि मुन्ने दादा मुन्ने बोबो से शादी करना चाहते थे। ए हट, वो हंसी, फजूल बातें मत कर, अभी सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी, बताएं तो नाराज हो जाएंगे मुझसे, वो राजदाराना अंदाज में बोलकर हंसी। जितना मुझे पता है किसी को ना पता होगा, मुन्नी जब भी तो बुदकती है मुझसे। बस बेटा मुन्ने बोबो के अब्बा ही फन्ने खान बन गए थे, वरना समझ नया पार लगने ही वाली थी। अब तक शादी ना की मुन्ने बोबो ने तो इसका सबब ये मुन्ने ही हैं। ऐसा जबरदस्त अफेयर, मैं हैरान हो गया। हैं क्या, बीजान ने मुंह खोल दिया, कुछ नहीं आप ले जाएं इन्हें, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, वो हंसने लगी। बड़े मियाँ से कहो तो जानू, मैं तौलिया लेकर गुस्लखाने चला गया। वहाँ से निकला तो मुन्ने दादा तैयार थे, बीजान भी तैयार थी, फरहत किचन में थी, खाला भी मसाले पर बैठी थी। जल्दी करें आपा, मैं भी नमाज पढ़कर निकलूंगी, बीजान ने खाला भी को सलाम फेरते देखकर कहा, अपना दुपट्टा कानों के पीछे से सर पर लपेट लिया। तुम तो और देर कर रहे हो, मुन्ने दादा ने बेचैनी से कहा। नहीं मुन्ने दादा, मेरी हिम्मत नहीं है, और मेरी इन लोगों से ऐसी जान पहचान कहाँ है, मैं सोच रहा हूँ बड़ी बुआ के घर हो आऊं, अम्मा ने इनकी बहू के लिए चीजें भिजवाई थी, वो दे दूंगा, कुछ दोस्तों से मिल लूंगा, फिर लौट आऊंगा। मुझे लगा मुन्ने दादा ने इत्मीनान का सांस लिया है। ये दास्तान मैंने जमानों पहले सुनी थी, मगर ध्यान नहीं दिया था। आज इतने अरसे बाद मुन्नी बीबी का जिक्र सुनकर मुझे सुनी हुई तमाम बातें याद आ गई थीं। इतना इत्मीनान मुन्ने दादा को नहीं हुआ होगा जितना मुझे हुआ था। मैंने बावर्ची खाने की तरफ मुंह करके फरहत को आवाज दी, फरहत चाय पियोगा, जी ला रही हूँ, इसने जवाब दिया। मैं गीले बालों में तौलिया फेरने लगा। बीजान नमाज शुरू कर चुकी थी। मुन्ने राधा बेचैनी से पलंग पर बैठे पैर हिला रहे थे। खाला भी अपने कमरे में जा चुकी थी। खाला भी नहीं जा रही, मैंने सरसरी अंदाज में मुन्ने दादा से पूछा। हाँ, शायद वो नहीं जा रही, कहीं और जाना होगा। मैं जेरे लब बड़बड़ाया। मोहल्ले के हर घर में ना झांक लें तो नींद नहीं आती इन्हें। ऐसे लोग बड़े दिल हर दिल अजीज होते हैं, मुन्ने दादा ने हंस कर जवाब दिया। बीजान नमाज पढ़ते ही बुरका ओढ़ कर खड़ी हो गईं। इन दोनों के घर से निकलते ही मैं दबे पांव बावर्ची खाने की तरफ गया। पहर सालन भून रही थी, इसे मेरी आमद का पता भी ना चला। चूल्हे की तपिश से इसका गला गुलाबी चेहरा लाल हो चुका था। इस जमाने में गैस के चूल्हे नहीं थे, अक्सर घरों में कोयले अंगेठी में दहकाए जाते थे या फिर बगैर छत वाले हिस्से में मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ियां जलाई जाती थी। फरहत अंगेठी पर सालन भून रही थी, इसके ऊपरी होंठ पर पसीने के कतरे शबनम की तरह चमक रहे थे। लग रहा था जैसे अंगारे पर तारा ठहरा हुआ है। वो किसी काम से पलटी तो मुझे देखकर डर गई। ओए अल्लाह, इसने अपना हाथ बेख्तियार सीने पर रख लिया। मैं हंस पड़ा। बहुत डरपोक हो तुम, आपसे तो डर लगने लगा है, इसने खिसिया कर कहा। बी जान चली गई क्या? क्यों? इसलिए कि आप यहाँ पहुँच गए, इनकी मौजूदगी में तो शायद ये मुमकिन नहीं था। जी नहीं, इनकी मौजूदगी में भी मुमकिन था, इसलिए कि वो खूब जानती हैं कि मैं आने आपको हासिल करने का अहद इन्हीं से किया है। क्या, कब? इसकी हैरत बता रही थी कि इसे अभी तक कुछ इल्म नहीं हो सका, हालांकि मैं समझा था कि इसे इल्म है। जब पिछली बार आया था तभी कह गया था कि फरही मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखिएगा, इसे कुछ हुआ तो पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। रहने दें, बस लगा चुके आग। वो शर्मा भी रही थी और बातें भी करना चाहती थी। तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, ये आग जलाती नहीं है, सुलगाती है धीमे धीमे। मैंने इसके चेहरे की तपिश से अंदाजा लगा लिया कि वो किस आग की बात कर रही है। कुछ देर पहले जो हुआ था इसकी तपिश में अब भी महसूस कर रहा था, और वो तो औरत थी, इसके लम्स ने मुझे सुलगाया था तो तपिश तो इसे भी महसूस हुई होगी। पर ही ऊपर चलते हैं, चांदनी में। ऊपर चांदनी नहीं है, सामने ताहिरुल्लाह की बिल्डिंग का बल्ब है जिसकी रोशनी हमारी छत पर पड़ती है। इनके झरोके इसी जानिब खुलते हैं, इसने तंबिया के अंदाज में कहा। खुलते होंगे, चलो बस, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। अरे छोड़ें भाई, खाला भी आ जाएंगी, मुझे सालन भूनना है। फहद प्लीज, इस लम्हे का इंतजार मैंने बरसों किया है। सब कुछ तो कह चुके आप, अब क्या है, वो झिझक रही थी। मैंने कहा है सब कुछ, और तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं पता बस। फरहत जल्दी से बावर्ची खाने से निकलकर खुले सहन में आ गई। मैंने चाय का कप वहीं रख दिया। फरहत के इनकार में इकरार का पहलू मुझे मसरूर कर रहा था, लेकिन यूं समझिए कि अल्लाह ने करम कर दिया। खाला भी बाहर आकर बैठ गईं। इन्होंने फरहत से कहा कि वो इनके सर में तेल डाल दे। मेरे सारे प्रोग्राम धरे रह गए। फरहत के चेहरे पर मायूसी सिर्फ लम्हे भर को छाई, फिर वो मुझे मुंह चढ़ाने लगी। मेरा जी चाहा कि मैं सर दीवारों से टकराता फिरूं। खाला भी बहुत खाक थी, इन्होंने घंटा भर सर दबवाया। जब तक मुन्ने दादा और बीजान आ गए, इनका वावेला खत्म नहीं हुआ। वो रह रहकर हाय का नारा लगाती थी। बीजान और मुन्ने दादा की आमद ने तो मेरा दिमाग ही उड़ा दिया। आज क्या, मेरठ से निकलते ही एहसास हो गया था कि जो जिया फरहत को बाहों में लेके इसके कानों में प्यार भरी सरगोशियां करना चाहता था वो मैं नहीं। क्या बाहर से आया हुआ कोई शख्स था जिसने मेरे कालब में ढल कर मेरे शफाफ किरदार को दागदार कर दिया था। हाँ, इस रात जब बीजान और मुन्ने दादा के अलावा खाला भी सो गईं, इस रात मेरी आंखें जलती रहीं, नींद नहीं आई। मैं घर में फैल जाने वाले सन्नाटे का मुंतजर था और जब मुझे यकीन हो गया कि अब सब सो चुके हैं तो मैं दबे पांव उठा। फरहत आज भी बीजान के कमरे में सोती थी, बस अब पलंग अलग था। मैं कमरे में दाखिल हुआ, इसका पांव हिलाया और ये देखकर वो जाग गई कि इसे इशारा करता हुआ सीधा छत पर पहुंच गया। इंतजार के लम्हे तवील होते जा रहे थे, मेरी आंखें सीढ़ियों पर और कान किसी आहट पर लगे थे। शायद फरहत की हिम्मत नहीं हो रही या शायद बीजान उड़ गई हो। मैं अपने दिल को तसल्ली देता रहा। यह ख्याल मुझे अचानक ही आया था कि वो आ भी गई तो मैं क्या करूंगा। इजहार मोहब्बत में कर चुका था, उसूली तौर पर तो इतना काफी था। अब मुझे अम्मा वगैरह को भेजकर मंगनी का या निकाह का बंदोबस्त करना चाहिए था, मगर मेरी बेकरारी अजीब सी थी। मैं जो तैयब के अंदाज को छिचोरपन या लोंडियारापन कहा करता था, खुद हद से गुजर रहा था। फरहत की आमद के ख्याल ही से बदन में चूंटियां रेंगने लगी थी। आज चांद नहीं निकला था, वो रोशनी जिसे मैं चांद की रोशनी समझ रहा था वाकई सामने वाली बिल्डिंग की पेशानी पर लगे बल्ब की थी। वो बुझा तो इस छत पर भी तारीकी छा गई। इस अंधेरे के साथ ही मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ गई। काफी वक्त गुजर चुका था, फरहत नहीं आई थी। अब मुझे कोफ्त होने लगी थी। सुबह सवेरे दिल्ली के लिए निकल जाने का प्रोग्राम बन चुका था, फिर जाने कब आना होता। मैं बेचैनी से ठहरने लगा। आखिर तंग आकर मैंने वापस बिस्तर पर जाने का फैसला कर लिया। अभी मैंने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाया ही था कि मुझे अपनी पुश्त पर आहट महसूस हुई। मैं पलटा तो इस नुस्वानी हैवली को देखकर ठटक गया जो दबे पांव मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं खुशी से दीवाने वार इसकी तरफ लपका। फरहत, इतनी देर कर दी। मैंने बेख्तियार इसका हाथ थाम लिया। वो यूं बोली जैसे हंसी दबा रही हो, मेरी बेकरारी का लुत्फ ले रही थी। मैंने महसूस किया कि इसके हाथ सर्द हैं, बहुत सर्द। फिर वही दबी दबी हंसी सुनाई दी। इसके पास से बड़े मशहूर कन खुशबू आ रही थी। डर लग रहा है ना, ठंडे हो रहे हैं तुम्हारे हाथ। मैं गैर महसूस तरीके से इसके करीब हो गया। मुझे ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि फरहत ने मुझे पीछे हटाने या खुद सरक जाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं चांद की किरणों को गवाह बनाकर तुम्हें अपनाने का वादा करता हूँ फरहत, जो जज्बा बचपन से मेरे और तुम्हारे दरमियान की दूरी में पलता रहा वो मोहब्बत का जज्बा था। इसे मैंने अब महसूस किया है। तुम भी वादा करो कि मेरे सिवा कभी किसी के मुतालिक सोचोगी भी नहीं, वादा करो। वो कुछ नहीं बोली। क्या मुसीबत है यार, जरा सी भी रोशनी नहीं है कि मैं तुम्हारी गहरी आंखों में ही इकरार देख सकूं। सुनो फरहत, प्लीज वादा करो। मैं वो चुप रही, मगर इसने मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया और मुझे लगा जैसे बिजली की लहरें इसके हाथ से मेरी हथेली में मुंतकिल हो रही हैं। मैं बेकाबू हुआ। मैंने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। इसके खुले हुए बाल मेरे चेहरे और शानों पर बिखर रहे थे। ये नॉवेल कॉल बेल हिस्सा 2 का बकिया हिस्सा पार्ट 17 में समाप्त फरमाएं।